Ano yun?
नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नाम्ने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय लोग बोलिए तीसरा चौथा की व्याख्या की जाएगी विस्तार से अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात् अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात् अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात् बोल सकते हैं श्लोक अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्
अवतीर्य यदुर्वंशे
भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा
तानि नोवद विस्तरात्
अवतीर्यजदुर्वंशे
भगवान भूत भावना
विश्वात्मा
तानि नोवद विस्तरात्
अवतीर्यजदुर्वंशे
भगवान भूत भावना
सब में हलंत है, अंतिम सब में हलंत होना चाहिए टोटल। रिपीटेशन कीजिए, निवृत्त तरसै रूप गीयमानात् ओ सधारोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात् निवृत्त तर्षै रूप गीयमानात् भो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात् निवेद तर्षै रूप गीयमानात् भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। हरे कृष्ण। एक दो लोग बोल लीजिए।
निवृत्त तर्षै रूप गीयमानात् भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत
तर्षै रूप गीयमानात्
श्लोक कुरान वादा
उमान
गिरते बिना पतुना निवृत्त तर्षय रूप गीयमाना
लेकर यदुवंश में भगवान भूत भावना विराट जगत के कारण स्वरूप कृतवान संपन्न किए यानी जो भी कार्य विश्वात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा तानी उन सभी कार्यों को नह हम लोगों से बदा कहिए विस्तरात विस्तार से निवृत्ता मुक्त तरसई संसारिक भोगों की कामना भोगों का प्यास उपगी अमानात वर्णित किया गया या गाया जाने वाला भव औषधात भौतिक रोग की सही औषधि से श्रोत कानों से सुनने की विधि मन के लिए विचार का विषय अभिरामात ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से कह कौन उत्तम श्लोक भगवान का गुणान वादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से उमान मनुष्य विरज्जेत अपने को बिलक रख सकता है बिना रहित पशुघ्नात कसाई अथवा अपने आप को बध करने वाला आत्मघाती यद्यपि तीसरा श्लोक भी महत्वपूर्ण है लेकिन चौथा श्लोक कुछ विशेष महत्वपूर्ण है। विगत तीन दिनों से दो दिन पहले से दशम स्कंद प्रारंभ हुआ है तो जो लोग कल परसों उपस्थित हुए हैं वे कथा के लिंक को समझ रहे हैं और नए लोगों के लिए 5-7 मिनट पीछे से भूमिका है। श्रीमद् भागवतम में विशेष 10 विषयों का वर्णन है जो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानो कथा मुक्ति निरोध और आश्रय। भगवद गीता के 5 टॉपिक हैं और भागवत के 10। 5 टॉपिक को 18 अध्याय में वर्णन किए और 10 टॉपिक को 335 अध्यायों में और 12 स्कंद में। तो ये 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि, जगत की सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन, जो भगवान के द्वारा सृष्टि के तत्व प्रदान किए गए ब्रह्मा को उसको सर्ग कहते हैं। और ब्रह्मा से लेकर अब तक जो सृष्टि का विस्तार हो रहा है उसको विसर्ग कहते हैं, विशेष सृष्टि संक्षेप में। इसके बाद सर्ग विसर्ग स्थान, स्थान जिस भगवत शक्ति से एक जगह से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का पालन होता है उसको स्थान कहते हैं, उस शक्ति क्षमता को सर्ग विसर्ग स्थान। पोषण, और जिस भगवत कृपा से नास्तिक आस्तिक साधु योगी बदमाश क्रिमिनल सब पालन होता है उसको पोषण कहते हैं, उस भगवत कृपा को। सबके नाकों तक ऑक्सीजन का सप्लाई करना, सबके लिए सूर्य की व्यवस्था करना, जनरल कृपा। और फिर विशेष कृपा अपने भक्तों के प्रति उसको पोषण कहते हैं। पोषण का वर्णन है 6वें स्कंद में, अलग अलग स्कंदों में वर्णन है। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। ऊति, ऊति का अर्थ है वासना। हमको भोग की अनेक वासनाएं हैं हमारे चित्त में, तो भोग वासना है, संसार को भोगने की वासना, इसको असत वासना कहते हैं। जो सत वासना नहीं है, टेम्पररी वासना, कभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा होता है कभी कुछ, और वो प्राप्त हो जाने के बाद फिर दूसरा, और प्राप्त होने के बाद ही वो दुखदाई है, परमानेंट सुख नहीं है। इसको भगवान के अतिरिक्त जो भी कामना है वो असद है। और दूसरा है सद वासना, सही वासना, सत्य वासना। और तीसरा है मिक्स वासना, कुछ इधर भी रहा है कुछ उधर भी रहा है, कुछ सत कुछ असत। तो इसका वर्णन 7वें स्कंद में है। असत वासना का नेतृत्व हिरण्यकश्यपु किया है, जिसका वर्णन 5 अध्याय में हुआ है। और फिर सद वासना का उसका ही पुत्र प्रहलाद महाराज का वर्णन 6 से 11। और फिर मिश्र वासना संसारिक लोगों के लिए महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्त्री धर्म सबका। तो इस तरह ऊटी, ऊटी माने कर वासना। इसके बाद मनवंतर की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु परिवर्तन होते हैं, तो उस मनु के शासन में जो शासन व्यवस्था है, मनु का संविधान, मनु संहिता आदि, उसकी व्यवस्था, उसका वर्णन मनवंतर। इसके बाद 8वां स्कंद में, इसके बाद ईशानु कथा। ईशानु कथा में 3 शब्द है, ईश अनु और कथा। ईश माने भगवान, अनु माने फॉलोअर, भगवान के भक्त, और कथा माने कथा। तो ईशानु कथा का वर्णन 9वें स्कंद में हुआ है। तो 2 महान वंशों का वर्णन करते हुए अनेक राजर्षियों का चरित्र वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूर्य वंश और चंद्र वंश का। ईशानु कथा में वर्णन करते हुए भक्तों के महान उज्जवल चरित्र का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इन दोनों वंशों को भगवान अलंकृत किए, इस वंश में अवतार लेकर, सूर्य वंश में श्री राम के रूप में और चंद्र वंश में श्री कृष्ण के रूप में। तो चंद्र वंश में ही एक जदु नामक राजा हुए, बहुत तेजस्वी महाराज जाति के पुत्र, और सारा वंश भगवान से उद्भूत होता है, इसका वर्णन किए हैं। जैसे भगवान गर्भोदक शाही के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के अनेक पुत्रों में अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य विवस्वान, इंद्र आदि 12 पुत्र हैं उनमें सूर्य, और सूर्य के पुत्र के रूप में विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु श्राद्ध देव, और उस वैवस्वत मनु के विस्तार करने में सूर्य वंश का वर्णन हुआ। और फिर चंद्र वंश का वर्णन करते हुए भी ऐसे ही कहते हैं, भगवान के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में अत्रि, अत्रि के पुत्रों में चंद्रमा, अत्रि की पत्नी थी अनसुईया, अनसुईया ने भगवान शिव प्रार्थना की तपस्या के बाद भगवान को ही पुत्र के रूप में चाही। अत्रि और अनसुईया जब तपस्या किए तो अपने प्रार्थना में यही कहते थे कि जो जगत के सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले, वो प्रभु मुझे दर्शन दे। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो मैं अत्रि मुनि ने कहा कि मैं तो तीनों को बुलाया नहीं, मैं तो भगवान एक को बुलाया जो जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। तो हंसते हुए भगवान कहते हैं लेकिन हम लोग एक रूप में करते नहीं, तीन रूप में करते हैं, इसलिए तीनों आ गए। इतना सुंदर तीनों का रूप था कि अनसुईया ने आग्रह किया कि आप तीनों हमारा पुत्र बन जाइए। तो भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव के अंश से दुर्वासा, ये तीन महान तेजस्वी, तीनों का नाम प्रसिद्ध है, भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। तो उसी चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, नहुष के जजाति, और जजाति के सबसे बड़े पुत्र थे जसु, और सबसे छोटे थे पुरु। इस लंबी कथाएं हैं नवम स्कंद में। तो उस जदु वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरु वंश का पहले वर्णन किए, तो कहते हैं जदोर वंशम नरह सुत्वा सर्व पापई प्रमुच्यते। मैं जदु वंश का वर्णन करने जा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति भूल से सुन ले तो उसका सारा पाप जन्म जन्मांतर का समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जत्रावतीर्ण भगवान साक्षात भगवान जिसमें अवतार लिए, आंशिक रूप से नहीं, स्वयं भगवान जिस वंश में आए। तो अभी जदुवंश की कथा कहते हुए अति संक्षेप में कहते हैं, लास्ट में एकदम अंतिम 24वां अध्याय के 2 श्लोक में, कि इसी जदुवंश में सुरसेन नामक राजा हुए और सुर के पुत्र वसुदेव, और वसुदेव की अनेक पत्नियों से अनेक संतान हुए, जिसमें देवकी और रोहिणी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवकी के अंतिम संतान के रूप में, 8वें पुत्र के रूप, अंतिम तो नहीं, अंतिम तो सुभद्रा थी, लेकिन 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान आए। तो इसको इतना संक्षेप में कहते हैं कि कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से अवतरित होकर भगवान गोकुल में चले गए और वहाँ ब्रजवासियों के साथ लीला किए, फिर कुछ काल के बाद मथुरा में आकर कंस का वध करके बाद में द्वारिकापुरी का निर्माण किए और अनेक विवाह किए, अनेक संतान उत्पन्न किए और पृथ्वी पर बड़े हुए असुरों के महान भार को महाभारत युद्ध के द्वारा अर्जुन के विजय डंका बजाकर असुरों का संहार किए और बड़े खुचे लोगों को छिटपुट और बाद में अपने जदुवंशियों का भी विनाश करके अंत में उद्धव को अपने विषय में ज्ञान देकर अपने नित्य लोक को चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भागवत में संक्षेप में 2 अध्याय में, 2 श्लोक में कह दिए। तब कहते हैं महाराज परीक्षित के अरे अरे तो गड़बड़ हो गया, इतना संक्षेप में केवल टेलर से काम थोड़े चलेगा, पूरा फिल्म आना चाहिए। तब प्रश्न करते हैं, यहाँ से 10वें स्कंद की भूमिका चालू होती है। कहकर जब चुप हो गए तब महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने सूर्य चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन तो बड़ा विस्तार से किया। राज्ञम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, आप दोनों वंश के परम अद्भुत राजाओं का चरित्र वर्णन किया, जरूर वर्णन किया, लेकिन यदोश्च धर्मशील से नित्रा मुनि सत्तम तत्रा अंशे नवतीर्ण से विष्णु बीरजानी संसन। इसमें आप जो चंद्र वंश के अंदर जदुवंश का वर्णन किया, हे मुनि सत्तम, हे समझने वालों में सर्वश्रेष्ठ मुनियों के गुरु, आप जैसे वक्ता हो और इस तरह से केवल चखा कर पूरा स्वादिष्ट अंश थाली छीन ले, ये उचित नहीं है। मन भर भोजन देना, जिसको खिलाना है पेट भर खिलाना चाहिए। बहुत पौष्टिक और बहुत स्वादिष्ट पदार्थ को केवल एक कौर मुंह में दिए, खाने का लोभ बढ़ा तब तक थाली हटा लिए, नहीं ये तो ठीक नहीं है। आप इसको वर्णन कीजिए और केवल भगवान का नहीं, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, भगवान और उनके अंश श्री बलराम का भी वर्णन, विष्णु बीरजाणि संस्न, भगवान के महत्वपूर्ण वीर्य का महिमा का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो अवतीर्जा जदुर्वंशे भगवान भूत भावना, जदुवंश में भगवान भूत भावन जीवों के परम कल्याण करने वाले परम हितैषी, भूत भावन कहते हैं जीव, भूत माने जीव, भूत माने प्रेत नहीं, जीव सभी जीवों को भूत कहा गया है शास्त्र में। भूत का अर्थ भूत पिशाच प्रेत से अर्थ लेते हैं, ऐसा नहीं, भूत माने जीव। सुहृदम सर्वभूतेषु गीता में कहते हैं सर्वभूतानाम, गीता में कई बार भूत भूत शब्द का प्रयोग हुआ है, भूत माने जीव। भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में क्षति, सभी का। तो भूत भावन जीवों के पालक जनार्दन, कीर्तवान यानी विश्वात्मा जो संपूर्ण विश्व के पालन करने वाले हैं, एक एक जीव के चाहे भजन करे या न करे सबका जो पालन करते हैं, उस विश्वात्मा भगवान के चरित्र को विस्तार से कहिए, विस्तार से, तानी नो बद विस्तरात, संक्षेप में नहीं विस्तार से। और महाराज परीक्षित के 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ना है, 4th दिन बीत रहा है, जब ये क्वेश्चन किए हैं तो 3 दिन बीत चुका है, 4th का भी लास्ट है, पूछ रहे हैं कि विस्तार से कहिए। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि अरे तुम्हारे पास टाइम कहाँ है कि सुनोगे विस्तार से। कहते हाँ मैं जानता हूँ कि कृष्ण कथा सुनने के मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जो भी बचा है उसमें कृष्ण कथा ही मैं सुनना चाहता हूँ। तो कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहते हो, और बहुत सी बातें हैं सुनने लायक जीवन में उपयोगी, बहुत से श्रेय हैं, बहुत साधन है, तो कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहते हो, तो उसके औचित्य को 4th अध्याय श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मैं क्यों कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ इसको यहाँ से बतलाना है, केवल एक श्लोक में नहीं, कई श्लोकों में बताए हैं, लेकिन कम से कम एक श्लोक में सुनिए। तो सुनने का औचित्य हो, अगर कोई कहे कि आपका तो फेवरेट कृष्ण कथा है और बाकी जो लोग बैठे हैं उनके लिए, अगर उनको कोई दूसरा प्रसन्न हो तो, तब कहते हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार के किसी भी स्तर के व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा ही उचित है। इसमें एक से एक विरक्त सन्यासी, विरक्त चूड़ामणि बैठे हैं, और तुम अपने पारिवारिक रिश्तेदार की बातें पूछ रहे हो। कृष्ण तो पांडवों के अपना संबंधी थे, महाराज युधिष्ठिर के मामा के लड़के थे, तो तुम अपने रिश्तेदार की चर्चा इस भरे हुए सभा में कर रहे हो, अगर कोई पूछे तो बाकी लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो, बाकी लोगों को अगर ये अच्छा न लगे तो, तब कहते हैं अरे किसको नहीं अच्छा लगेगा, प्रत्येक श्लोकों का लिंक है, आचार्य ने बताया है, सबको अच्छा लगेगा। तो इसमें किसिम किसिम के लोग बैठे हैं, कोई गृहस्थ है, कोई राजा है, कोई विरक्त है, तरह तरह के लोग हैं, कोई संसारिक विषयी है, तो ऐसी चर्चा जो सबको अच्छा लग जाए तब न सब सुनेगा, नहीं तो अपने काम की बात नहीं है, उठ कर लोग चले जाएंगे, अरे यार ये केवल विरक्तों की बात कर रहे हैं, गृहस्थों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा। तो तब कहते हैं निवृत्त तरसई रूप गीय मानत अभव सदा क्षत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्जित बिना पशुनाथ। अब निवृत्त तरसई, तर्स तर्स कहते हैं हिंदी में, भोजपुरी में, बंगला में, तरास, तरास माने प्यास, तरास उस प्यास को कहते हैं जब व्यक्ति गर्मी के दिनों में कहीं धूप थक कर आया है, पानी की बहुत आवश्यकता है लेकिन पानी मिला नहीं, और उसको चटका लगता है, प्यास बहुत लग गया है, अगर बाद में पानी मिले, बाद में देर के बाद, तो पीने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। खूब पी लिया, 2 लीटर पी लिया, फिर भी लगता है जीभ सूख गया, भीतर पेट में पानी चला गया लेकिन जीभ पर उसका कोई असर नहीं है, एकदम सूख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, फिर पीते हैं, फिर प्यास बुझती नहीं, तो उस प्यास को तराश कहते हैं। एकदम चटका लग रहा है, बार बार मुंह सूख रहा है, ऐसे जब धूप लग जाता है, लू लग जाता है, तब तराश आता है। तो और वह तराश 2-4 लीटर का नहीं है, 1 घोंट का है, थोड़ा सा फिर लगता है, फिर पीता है, फिर लगता है, वो जाता ही नहीं, उसको तरस कहते हैं। तो निवृत्त तरस ही, तरस कहते हैं विविध प्रकार के भौतिक कामनाओं को, संसार के भोगों की कामना है मन में, उसको प्राप्त करने के बाद भी अभी बाकी रहता है। चलो बहुत धन कमाने में टेंशन हो रहा है, विधायक का इलेक्शन जीत जाएंगे तो समस्या दूर हो जाएगी, बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी तराश मिटी नहीं, अभी मंत्री बनना बाकी ही है। अगर मंत्री बन गए फिर भी तराश नहीं मिटा, चीफ मिनिस्टर बनना बाकी है। अरे चीफ मिनिस्टर बन गए तो अभी राज्य से नहीं, अब केंद्र में जाना चाहिए यार, वहां का कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो होने के बाद भी अभी प्राइम मिनिस्टर बनना बाकी है। इसको कहते हैं राज। किसी भी स्तर पर जाने के बाद यह अनुभव न हो कि अब हम सुखी हैं, अभी दुख की संभावना, सुख प्राप्ति की लालसा ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसको विषयों का त्रास कहते हैं। और वह विषय सुख दे नहीं पाता है, जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो फिर दूसरे की कामना होती है, और ज्यादा उसके फेर में पड़ते हैं तो वही दुखद हो जाती है। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया, अगर आप एक सीमा तक खाए उचित ढंग से, जितना शरीर को चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा है, अच्छा है कहते हुए ज्यादा खा लिए तो वही अपच हो जाएगा, दिक्कत करेगा। आपको एक सत्य घटना बताते हैं, एक सुनने तो लगेगा कि सचमुच जोक है लेकिन वास्तविकता है, कि एक विदेशी भक्त, बहुत पहले लगभग 88 89 की घटना है, 8 या 9 होगा, चंडीगढ़ में वो रहता था, 1-2 महीना रहा। तो उसको प्रथम बार सूजी की हलवा खाने को मिला, और वो भी गाय के घी में बना हुआ और ड्राई फ्रूट डाला हुआ, खूब उसको इतना टेस्ट लग रहा था। जब प्रथम बार खा रहा था तो खाते समय मोर मोर कहकर खाता रहा, तो बहुत बार मांगा तो एक भक्त कहा कि प्रभु जी अब बाद में भी खा सकते हैं, बाल्टी भरा हुआ है, छोटा बाल्टी रख दिया, आप ले जाइए अपने रूम में। तो मजाक में दे दिया, तो आप बहुत इसको चाह रहे तो रियली टेस्टी नाइस बहुत कहकर खा रहा। तो फिर पूछा कि सचमुच ले जाए खाने के बाद, हाँ, तो बाल्टी लेकर अपने रूम में गया, और उसको इतना अच्छा लग रहा था कि थोड़ा 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 करके वो खाता ही रहा, माना ही नहीं। और उस शाम का समय था, इतना ज्यादा खा लिया कि रात को उसको दिक्कत होने लगा, अब एकदम छटपटाने लगा, भक्त लोग हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर कहा कि अरे इसको तो उल्टी कराना पड़ेगा, एकदम ओवर यहाँ तक खाया। अब उल्टी कराने के लिए दवा देना चाहिए, दवा के लिए वो 2-4 घूंट पानी भी नहीं पी सकता था, जगह ही नहीं था, तो दवा दे रहा था, कोशिश कर रहा था, नहीं, फिर पेट दबा कर कोशिश किया किसी तरह निकाला जाए, बहुत कोशिश किया लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तो कहा कि अरे भाई आधा घंटा तक इस रहेगा तो मर जाएगा, अब कोई विकल्प नहीं, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। डॉक्टर लोग 2-4 डॉक्टर आ गए, बड़ा हॉस्पिटल में ले गए, कृष्ण कांति प्रभु प्रेसिडेंट थे, अब ले गए और ले जा करके कोशिश करने लगे कैसे किया जाए। तो डॉक्टर कहा नहीं नहीं तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सचमुच बहुत बड़ा ऑपरेशन भाग करके हलवा निकाला गया। और आप हंसने की बात नहीं, भक्त अब भी वृंदावन है, बहुत कीर्तन करता नाचता रहता है, उसको कपड़ा बिना बिना कुर्ता के स्नान करते जब देखेंगे, जब मैं बनारस में देखा एक बार तो प्रसन्नात्मा प्रभु थे, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना पेट फाड़ा हुआ है, तो कहते इतना बड़ा नहीं है, आप इसके कारण को जानेंगे तो बहुत हंसेंगे। मैं कहा क्यों, क्या हो गया था? तो कहे कि हलवा खाकर इसका ऑपरेशन हुआ है। तो प्रसन्नात्मा प्रभु बताए वो अभी वृंदावन में है, तो ज्यादा दिखता है वृंदावन, एजेड हो गए हैं, उस 60 के आसपास हो गए होंगे, उस समय 88 की घटना है। तो इस तरह देखिए, भोग भोग दुख में बदल जाता है, केवल जीव का ही नहीं, किसी भी इंद्रियों का भोग दुख में बदल देता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम थे बुधा। कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यही संस्पर्शजा भोगा, एक भोग का नाम लेते हैं, भोगा कहकर बहुवचन में एक को लीडर बनाते हैं, नेता है, इस संस्पर्शज भोग, जो भोग स्पर्श से, आलिंगन से, चुम्बन से प्राप्त है उसको स्पर्शज भोग कहते हैं। और भोगा माने इसी प्रकार देखने से, सुनने से, खाने से, प्रत्येक इंद्रियों के भोग दुख जो न ये होते, ये दुख का जन्म देने वाला है, इस सुख नहीं मिलता। और दूसरी इसकी विशेषता है आद्यंतवंत, ये प्रारंभ होता है लेकिन इसका अंत हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार खा लिए तो 6 महीना के लिए फ्री, ऐसा नहीं होता, बस सुबह खाए, दोपहर में भी चाहिए, दिन में 4 बार चाहिए, ये अंत होने वाला है, परमानेंट नहीं है, आद्यंतवंत, आदि और अंत इसके साथ है। आद्यंतवंत कौन थे अन्नते सुनमते बुधा, इसे बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमता है, कमजोर बुद्धि वाले ही लोग इन विषयों को चाहते हैं, डल माइंडेड, वास्तव में जो सुमेधा है, बुद्धिमान है, इन विषयों के फेरे में नहीं पड़ता। साफ साफ भगवान कह रहे हैं न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान नहीं रमता। लेकिन संसार में जो बुद्धिमान है उन्हीं को निवृत्त कहा गया है, निवृत्त तरसई, संसार के भोगों से जो निवृत्त हो गया है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो विरक्त चूड़ामणि है, सुखदेव सनकादिक देवर्षि नारद की तरह वे लोग भी उस सभा में बैठे थे, बहुत बड़े बड़े विरक्त, एक एक देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वहां बैठे थे, जो राजपाट छोड़कर वन में चले गए हों, उनको कुछ नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट छोड़ दिए, जो ब्रह्मर्षि हैं, बड़े बड़े जोगी हैं, नवजोगेर, ये लोग भी कुछ नहीं संसार का विषय चाहिए, कोई स्त्री सुख नहीं, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं, कोई ऑफिस फैक्ट्री दुकान नहीं, कोई बिजनेस व्यापार नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई अकाउंट नहीं, बस फ्री एकदम घूमते हैं भगवान की भक्ति के सुख में, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे, ऐसे भक्त जो कुछ नहीं चाहते, उनको निवृत्त तरस ही, जो विषयों के तराश से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे निवृत्त तरस ही रूप गीय मानत, ऐसे निवृत्त तरस ही भोगों से निवृत्त व्यक्ति के लिए भी कृष्ण कथा उपगीय मानत गाने लायक है। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको कृष्ण कथा अवश्य चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आत्मा रामस्य मुनय निर्गंथा पीर उरुक्रमे कुर्वती अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कहते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो अपने आप में रमण करते हैं, आत्मा राम है, मुनि है, मननशील है, विवेकी है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे, जो सारे ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बुद्धिमानी के साथ है, जो सारा संसार छोड़कर विरक्त हो चुके हैं, कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए भी कृष्ण कथा अवश्य चाहिए। इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान श्री हरि के गुणों की विशेषता है। विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए, इन पर प्रश्न है सौनक जी का, कि ऐसे निवृत्त व्यक्ति को, आत्माराम व्यक्ति को, जिसको किसी वस्तु की जरूरत नहीं, उसको क्या गरज पड़ गया कि 18,000 श्लोकों से भरा हुआ भागवत पढ़ा। प्रश्न है क्या जरूरत पड़ गया? जिनको इंजीनियर बनना है वे कोचिंग करे, कोर्स करे, पढ़े दिन रात मरे, उसको इंजीनियर बनना है, IIT कंप्लीट करना है। जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको IAS बनना है, वो तो पढ़े बड़ा बड़ा पोथा। जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनना है, वो सारे संविधान के पुस्तक पढ़े। लेकिन जिनको कुछ नहीं बनना है, कुछ चाहिए ही नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ गई इतना बड़ा पोथा पढ़ने का, 18,000 श्लोकों का? तब कहते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, ये है भगवान हरि के गुणों की विशेषता। यह आत्मा रावश्य मुनय निर्गंथा तिरुकुर में कुरवंती अहेतुकी भक्ति, वे भी भक्ति करते हैं। तो प्रश्न होगा कि वो क्यों भक्ति करते हैं, उनको क्या गरज है भगवान से? तो कहते हैं वे बेटा के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, स्त्री के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, ये अहेतुकी भक्ति करते हैं, बिना हेतु के, बिना कारण के। कोई कारण नहीं है संसारी, कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई सकाम भक्ति नहीं, कोई स्प्रिया नहीं, फिर भी वे भक्ति करते हैं और सकाम भक्तों से ज्यादा करते हैं। दिन रात उसी के फेर में पड़े रहते हैं, 24 घंटा कृष्ण का चिंतन करते हैं। यह है श्री हरि की विशेषता, इत्थम भूत गुणो हरि। इस श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने 18 प्रकार से किए। सनातन गोस्वामी पूछते हैं सनातन शिक्षा में मध्य चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला के 25वें परिच्छेद में कि जो आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने श्लोक की व्याख्या किया, कृपा करके हमको भी सुनाइए। मैं कथा सुना हूँ कि आपने सुनाया है, लेकिन किस रूप में व्याख्या किया ये नहीं सुना हूँ। तो महाप्रभु उनके सामने 61 प्रकार से व्याख्या किए, 18 ही नहीं 61 इस श्लोक की विशद व्याख्या किए। तो निवृत्त तरसई का अर्थ है आत्माराम, जो संसार को से कुछ नहीं जिनको चाहिए उनके लिए भी उपगीय मानत, वो गाने लायक है। कृष्ण चरित्र विरक्तों के भी गाने लायक चीज है। और भाव सदा छत्र मनोभिरामत, जो भाव के रोग से ग्रसित है, संसार के भोग किना रह नहीं सकते। एक व्यक्ति बहुत आश्चर्य में, दो बार पूछा तो मैं नहीं समझ पाया क्या कर रहा है। अपने उधर बिहार में एक छोटा सा शहर है भभुआ, वहाँ एक दुकानदार मुसलमान था, लेकिन बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत सज्जन। तो जब भी देखता हरे कृष्ण, बड़ा प्रेम से आइए आइए महाराज, बहुत बहुत प्रेम से बात करता, कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करता हिंदू धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में। तो उसके स्वभाव से मैं प्रभावित था कई बार। तो एक बार कहा कि एक बड़ा सीरियस प्रश्न मुझे करना है और आप नाराज नहीं होंगे, प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देंगे। तब बोले हाँ पूछिए, आज कौन सा सीरियस विषय है? तो क्या पूछता है कि महाराज इसी के बिना जहा जा सकता है, इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता, ये कैसे संभव है? कहते हैं कि तब आपको स्त्री बिना रहने वाले विरक्तों के बीच रहना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगा। तो कहा कि मैं तो सोच भी नहीं पाता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, मैं सोच सोच कर घबरा जाता हूँ। दादी आपका कमजोरी है, आप इसको अभी नहीं समझ पाएंगे क्या सुख है स्त्री बिना भी। एक बेटर सुख की जब अनुभूति होती है तो निकृष्ट सुख छूट जाता है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा मीठी खाता है और उसको लगता है कि इससे टेस्टफुल कुछ है ही नहीं, अगर उसको कोई छीने तो रोने लगेगा। लेकिन अगर कोई स्नेहवान पिता या स्नेहमयी जननी जानती है कि छीनने पर रोएगा, तो उसके हाथ में मिश्री का टुकड़ा दे दे, बेटा इसको खाओ, अगर कदाचित तो मिश्री को जीभ पर लगाया तो यह निर्णय करने में देर नहीं लगेगा कि उस मिट्टी से ज्यादा टेस्टफुल है। तो तब इसको कहते हैं कि जब व्यक्ति को उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है तो निकृष्ट अपने आप छोड़ देता है, जब नहीं मिलता तो उसी को स्वादिष्ट समझता है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, जब परम उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त होती है तो निकृष्ट छूट जाता है अपने आप। तो आपको एक कृष्ण सुख भगवत सुख की अनुभूति नहीं है, इसलिए इसको आप इतना गंभीर समझ रहे हैं। तो समझ गए, सुना, लेकिन किस परसेंटेज में समझा ये तो मैं नहीं जानता, उसको कोशिश किया समझाने का, लेकिन उसकी स्वाभाविक ये हृदय की जो उद्गार है वो बड़ा विचारणीय है, मेरे हृदय पर छाप कर पड़ गया कि वास्तव में बेचारा कोई कुतर्क नहीं कर रहा था, अपने पोजीशन का वर्णन कर रहा था। और केवल उसका ही पोजीशन नहीं है, इसमें ज्यादा 99.9% प्रभुपाद कहते हैं उसी स्टैंडर्ड के लोग हैं, उसी स्टैंडर्ड के लोग, उन लोगों को विषय नहीं छूटता। तो ये है भव रोगी, संसार के भाव को, संसार को भाव कहा जाता है, और भाव में जो प्राप्त होने वाले सुख है उसको भाव रोग कहते हैं, और रोग लग जाता है, छूटता नहीं। लोग शराब पीने की आदत बना लेते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, जब जन्म लिए तब नहीं पी रहे थे, बाद में उसको ग्रहण किए हैं और अब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये रोग है, नहीं छूटता है, आदत बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तो ऐसे भाव रोग की औषधि के रूप में इस संसार का सुख, संसार का भोग की स्पृहा हट जाए, इसके लिए भी कृष्ण कथा ही है। भाव भाव सदा क्षिप्त मनोभिरामात, मतलब कि वो ऐसा दवा नहीं है कृष्ण कथा। कभी कभी कोई शरीर में बहुत खुजली हो जाए, रक्त दोष हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो चिरैते काढ़ा पिलाते हैं वैद्य लोग आयुर्वेद में, बहुत काढ़ा, बहुत तीखा होता है, उसको पीते ही एकदम मुंह बिगड़ जाता है। गोमूत्र पीना नहीं चाहते, चिरैता कैसे पिएंगे, लेकिन बिना उसको पिए खून साफ नहीं होगा, या नीम के पत्ता, तो चिरैते की काढ़ा पिलाते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी आंख बंद करके किसी तरफ पी जाते हैं कि चलो खुजली ठीक हो जाए, चर्म रोग दूर हो जाए। तो वैसा कड़ा औषधि नहीं है कृष्ण कथा जो है, मनोभिरामात, ये बड़ा मधुर काढ़ा है, बहुत मधुर, पीने में भी अच्छा लगता है। लोग पीना नहीं जानते हैं, पिए ही नहीं है, इसलिए इसका टेस्ट नहीं जानते, कड़ा नहीं है। जब पीने लगेंगे तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं, इसी को पीते रहेंगे। तो भव सदा क्षत्र मनोभिरामात, ये भव रोग के संसारिक लोगों के लिए तो फर्स्ट क्लास की चीज है, विरक्तों के लिए भी है, और सिनेमा देखने वालों के लिए कृष्ण कथा फर्स्ट क्लास, कृष्ण से बढ़कर कोई हीरो नहीं है। अगर कोई इनके चरित्र को सुने तो विषयी लोग भी सुनने लगते हैं, विषयी लोग भी। कृष्ण ऐसे पर्सनालिटी है कि एकदम विषयी से विषयी लोग, एकदम कामुक, मुसलमान, नास्तिक, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति कृष्ण के चरित्र को सुनकर प्रभावित हो गया, और जब कृष्ण के लीलाओं का मधुर स्वभाव का वर्णन अपने पदों में किया। अनेक मुस्लिम कवि हुए हैं जो कृष्ण के चरित्र को अद्भुत ढंग से लिखे हैं, और रसखान जी का पद कितना बेजोड़ है, मुस्लिम कवि हुए हैं, और चलो रसखान तो विरक्त हो गए, गोकुल में निवास किए, लेकिन आज भी आप लोग कवि सम्मेलन में नहीं गए होंगे, या गए होंगे तो देखे होंगे, कोई कोई मुस्लिम कवि ऐसे कृष्ण के गुणों का वर्णन करता है कि चकित कर देता है, कितना सुंदर। एक मुस्लिम उनके केस का वर्णन कर रहा था और उनके दृष्टि का, कि एकदम चकित हो गए सभी लोग, एकदम भौतिक वेशभूषा में पैंट शर्ट पहना हुआ एक कवि बनारस में एक मंच पर आया, वो मुस्लिम कवि था, इतना सुंदर कृष्ण के रूप का वर्णन किया, उनके अलकावली का, उनके बाल का, उनके मधुर मुस्कान का, इतना सुंदर वर्णन किया कि सब लोग बराबर उसके एक एक शब्द पर ताली बजता था। और वो शुरू में ही आकर कह दिया कि संसार के रूप का वर्णन स्त्री पुत्र के पुरुष के तो सब लोग करते हैं, मैं उस हीरो का वर्णन करने जा रहा हूँ जो सबको रमा देता है। और एकदम कोई भी व्यक्ति एक बार देख ले तो पागल हो जाएगा उस रूप का वर्णन। इतना सुंदर ढंग से किया कि मैं तो चकित हो गया देखकर। बाप रे, लाखों करोड़ों कवि जिसके रूप का वर्णन करते हैं, किस जिसके गुण का वर्णन करते हैं, संसारिक भावना वाले लोग भी, संसारिक चेतना वाले लोग भी, कैसे अपने लोगों से संबंध रखना चाहिए, कैसे अपने मित्र से व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने माता पिता से, कैसे अपने पत्नी से, सबका सुंदर प्रकाशन कृष्ण कथा में हुआ है या राम कथा में भी। राम कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह केवल असुरों को मारने के लिए अवतार नहीं हुआ है, यह पूरे मनुष्य समाज को रमा देने वाली चरित्र है, पूरा कंप्लीट। कैसे बेटा हो तो श्री राम की तरह खूब सुंदर वर्णन करते हैं, राजा हो तो राम की तरह, पति हो तो राम की तरह, भाई हो तो राम की तरह, शिष्य हो तो राम की तरह, एकदम हर चीज में आदर्श स्थापित किए, बेजोड़ चरित्र, बेजोड़ चरित्र, स्वामी हो तो राम की तरह, अद्भुत रामचरित्र है, श्री कृष्ण चरित्र है, रमा देने वाला है। जो व्यक्ति राम कथा सुन ले उसको छोड़ना ही नहीं चाहेगा, रम जाता है उसमें। इस प्रकार भगवान के चरित्र है जो संसारिक लोगों को भी रमा देता है। संसार में इतना अप डाउन स्थिति है, विषमता क्यों है, क्योंकि लोग राम कथा नहीं सुने हैं, कृष्ण कथा नहीं सुने हैं। अगर वो राम कथा सुनते तो माता पिता के साथ कैसे करना चाहिए ये सुनने को मिलता जरूर, भाई से भाई को कैसे संबंध रखना चाहिए सुनते, एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सुनने को मिलता, एक पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए सुनने को मिलता। ये सारा चरित्र देखिए, आजकल के राजा और सेवक में, बॉस में और नौकर में कितना भारी अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हमारे बॉस की कथा सुन लेने के बाद समझ में आएगा ऐसा बॉस कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं कि प्रभु तरुतर कपिदार पर तेहिकिए आप समान, तुलसी न कहु राम सो साहिब सील निधान। कहते हैं कि हमारे स्वामी पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके सेवक बंदर पेड़ के ऊपर, स्वामी नीचे बैठा है और सेवक ऊपर पेड़ पर टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी न कहूँ राम सो साहिब सील निधान। कहते हैं तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा साहब कहीं मिला है क्या सहनशील, अगर कोई नौकर बोस के कुर्सी पर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन हमारे स्वामी को देखिए नीचे बैठे हैं और सेवक ऊपर बैठते हैं, अपने मित्रों को बराबर आसन पर, सुग्रीव बंदर है लेकिन अयोध्या में अपने बराबर आसन पर बैठाते हैं, कहते हैं ये है सुग्रीव जी, इनके कृपा से मैंने दशानन पर विजय प्राप्त किया, इसने अपना सारा ताकत लगा दिया मेरे लिए। भरत जी को और वशिष्ठ जी को परिचय देते हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र विभीषण हैं, उनको बराबर आसन पर बिठाते हैं एकदम बराबर। तो यह है मित्रता का संबंध, इस तरह स्थापित किए सेवक के साथ और भाई के साथ। तो आप जानते ही भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ कितना सुंदर चरित्र, कितना सुंदर व्यवहार किए। और प्रजा के साथ जो राम ने व्यवहार किया है वो आज तो तरसते हैं लोग उस राज्य के लिए। राम राज्य की कल्पना करते हुए बेचारे गांधी जी चले गए। राम राज्य जनता को जो चाहिए वो, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को चाहिए दूसरे को नहीं, या अपने जाति या अपने समाज, ऐसा नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सबको फर्स्ट क्लास सुविधा। जिस किसान के खेत में पानी चाहिए वहीं वर्षा होती थी, जहां जैसा हवा चाहिए वैसा हवा, जैसा धूप चाहिए वैसा धूप, सारी प्रकृति अनुकूल। उनके राज्य में कोई नहीं मृत्यु नहीं हुई, उनके राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं, एक बार महाराज श्री कथा कह रहे थे रामचरित, तो एक व्यक्ति पूछा कि उस समय डॉक्टरों का बेचारों का क्या हालत होता होगा, सारा हॉस्पिटल बंद तो डॉक्टर की रोजगार कैसे चलता होगा। कहे कि कहां से कहां बुद्धि, जब सब चीज की सुविधा है तो हॉस्पिटल खोल करके बैठेंगे, क्या जरूरत है हॉस्पिटल और मेडिकल खोलने का, जब कोई बीमारी ही नहीं, सब चीज मेंटेन हो ही रहा है तो अलग से करने की क्या जरूरत है। उनके राज्य में केवल हॉस्पिटल ही नहीं, एक कोर्ट कचहरी भी नहीं था, कोई केस ही नहीं आया, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पूरे राज्य में केवल उनके राज्य में एक केस आया था, एक कुत्ता आया केस लेकर कि एक व्यक्ति उसको एक डंडा मार दिया। तो भगवान राम कहे कि भाई हमारे पास तो न्यायपालिका है नहीं, अगर तुमको एक डंडा मार दिया तो तुम ही बताओ उसको क्या दंड दिया जाए, तुम जो न्याय करोगे वही दंड दिया जाएगा। तो कहा कि हे प्रभु, इसको किसी मंदिर का महंत बना दीजिए। तो भगवान कहे ये दंड है, तो कहे कि हाँ, मंदिर का महंत बना देंगे ना तो इसको पता चल जाएगा कि क्या होता है, उसमें विषमता का व्यवहार जब होता है ना, मैं भी पहले महंत था, वो कुत्ता बतला रहा है, उसी महंत का रिजल्ट हुआ है कि मैं कुत्ता हुआ। विषमता अपने मंदिर में विषमता करते हैं, अपने स्पेशल व्यवस्था और भक्तों के साथ ऐसा ध्यान नहीं रखते, उसी का रिजल्ट हो गया कि मैं कुत्ता बना, ये भी बन जाएगा महंत और बाद में कुत्ता बनेगा तो हमारा बदला फिर जाएगा। तो भगवान कहे कि अच्छा, आप विचार कीजिए, समदर्शी होना चाहिए, जब आपको उस पोजीशन से गुजरने के बाद कुत्ता शरीर मिल गया तो आप इस तरह का दुख उसको क्यों देना चाहते हैं, ये उचित है, एक बार क्षमा कर दीजिए। आगे वो निर्णय जब सुनाया तो भगवान कहने लगे कि आप मेरे रिक्वेस्ट, मैं राजा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार माफ कर दीजिए। तो कहा ठीक है, ओके, माफ कर दिया लेकिन निर्णय सुनाया कि उसको महंत बना दीजिए, बस एक ही केस आया है, ओनली वन, और कोई न्यायपालिका नहीं। इतना सुख में रहने वाली प्रजा अगर राजा चले जाए तो कैसे झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा ना, पता नहीं कौन राजा आएगा। तो जब भगवान अपने नित्य लोक को जाने के लिए तैयार हो गए तो सारी अयोध्या की प्रजा रोने लगी, अयोध्या सिटी की नहीं, पूरा अयोध्या देश का, नहीं प्रभु हम लोग नहीं सह पाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान कहे चलो, सारे अयोध्या वासियों को कुत्ते तक को भगवान साकेत ले गए, कोई नहीं बचा, ऐसा राजा कोई होगा, सारी जनता का केयर करे, एकदम पूरी प्रजा को ले गए। सारी प्रजा जब चली गई तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो सब चले गए तो भगवान कहे चलो नहीं प्रभु, मुझको यहीं रहने दीजिए। अरे तुमने तो वचन किया है कि आपके चरणों में नित्य रहना है, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं प्रभु, वहां तो सेवा हुआ ठीक है लेकिन एक टेस्ट वहां नहीं मिल पाता है, आपकी कथा सुनने को नहीं मिलता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो कथा है भागवती, यह कथा स्वर्ग में नहीं है, सत्य में न स्वर्गे न कैलाशे, वैकुंठे नास्ति अयम रस, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित। यह सुख, यह भागवत का रस न स्वर्ग में है, न सत्य में ब्रह्मा के लोक में, न कैलाश में, न वैकुंठे नास्ति अयम रस, यह वैकुंठ में भी नहीं है, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित। यह आपकी कथा वहां नहीं मिलेगा, सेवा तो मिलेगा लेकिन कथा नहीं मिलेगा, इसलिए हमको रहने दीजिए, हम कथा सुनना चाहते हैं। तो भगवान हनुमान ऐसा नहीं होगा, तुमको दोनों जगह रहना है, वहां भी और यहाँ भी, कथा दो रूपों में, हनुमान जी को छोड़ दिए कथा सुनने के लिए, अपने साथ भी ले गए, भगवान सब समर्थ है। तो यह है कृष्ण कथा राम कथा, कथा सुनने की चस्का जिसको लग जाए वो छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहते, वैकुंठ छोड़ दे भले, भले भगवान को छोड़ दे लेकिन कथा नहीं छोड़ना चाहता है। यह रस है कृष्ण सेवा में, जो रस है कृष्ण कथा में जो रस है वह रस स्वयं भगवान में भी नहीं है, आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। जब माता यशोदा अस्तम पीते हुए अपने लाल को उफान में आया हुआ दूध बचाने के लिए कृष्ण को नीचे रख दी दामोदर लीला के उपकरण में, तो जब नीचे रख दी और नीचे रख करके दूध को उठा करके दूसरे रूम में रखने के लिए जाने लगी, तो वहां टीकाकार लोग कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में भाव क्या आया, अपना स्नेह अपना प्रेम अपना लाड़ला लाल अस्तन पी रहा है छोड़ना नहीं चाहता, उसको भी हटा देना क्या माता के वात्सल्य के अनुरूप है, ये उचित है? वो दूध गिरे या जल जाए क्या जरूरत है, क्या जरूरत था माँ यशोदा को इस प्रकार दुर्व्यवहार करना, अपने लाला को पीते हुए स्तन और छोड़ना नहीं चाह रहे थे फिर भी जबरदस्ती हटा दी कर रख दी और दूध बचाने चली गई। इसका कारण क्या है कि माँ के अंदर स्नेह का इतना भारी बार है कि वो सोच रही है कि अरे ये पद्मगंधा गाय का दूध जो गाय नंद बाबा के खीरक में दो चार पांच गाय ऐसी रहती थी जो जड़ी बूटी खाती थी औषधि खाती थी और उनका दूध कमल का गंध जैसा सुगंध निकलता था बड़ा पौष्टिक था और वो कृष्ण बलराम के लिए रखा जाता था, तो उसी पद्मगंधा गाय का दूध था। माँ सोच रही है मेरे स्तन का दूध कहाँ जा रहा है, जब चाहे तब पीलेगा, लेकिन यह दूध जो इसके लिए रखा गया है और यह अगर उफान में जल जाएगा गिर जाएगा तो हमारा लाला ये पौष्टिक दूध फिर आज नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो इसको ये दूध बचना चाहिए। अरे छोड़ो बच्चा है रो रहा है फिर रख कर आऊंगी पिला दूंगी क्या दिक्कत है इसमें, दूध रख लेती हूँ नहीं तो गिर जाएगा मेरा लाला फिर दूध कैसे खाएगा, फिर दही इसी दूध का बनता है कल दही नहीं बन पाएगा, फिर जो ताजा माखन निकल कर दिया जाता है वो माखन नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं इसको बचा ले लूं इसके सेवा के लिए। तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण का त्याग करके माँ यशोदा चली गई। वहां चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यह वात्सल्य यह सिद्ध कर दिया कि कृष्ण से भी कृष्ण सेवा बेहतर है बढ़कर, और वह कृष्ण अपने गोद में है अस्तन पकड़े हुए है एकदम निकट है, ऐसा नहीं कि कृष्ण का मंदिर में दीदी का दर्शन कर रही है अथवा जा रही है मंदिर में, ऐसा नहीं है, उस एकदम गोद में अंक में पड़ा हुआ कृष्ण को भी त्याग करके सेवा की, और यह है सेवा की उत्कृष्टता। उसी प्रकार हनुमान जी भगवान के चरण सेवा सुख को साथ रहने का सानिध्य के सुख को भी त्याग करके कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, और भगवान कपिल देव कहे कि मुक्ति चरम परम लक्ष्य जो मुक्ति है उसको भी छोड़कर भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, देने के बाद भी लोग नहीं लेते मुक्ति क्योंकि आपकी सेवा नहीं मिलेगी उस मोक्ष में उस वैकुंठ में। तो इस तरह कृष्ण कथा की यह विशेषता है कि निवृत्त तरसई रूप गीयमाना, विरक्त लोगों के लिए भी गाने लायक है और संसार के रोग से ग्रसित लोगों के लिए औषधि है उनके लिए। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात बिना विरज्जत पुमान विरज्जत बिना पशुनात, कहते हैं उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक माने फर्स्ट क्लास के श्लोकों में जिनका चरित वर्णन है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक माने श्रेष्ठ श्लोक में, श्लोक के माने कीर्ति, जिनके कीर्ति का वर्णन श्रेष्ठ श्लोकों में है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, ऐसे भगवान के गुणानुवाद को छोड़कर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनको छोड़ दे नहीं सुनना चाहे, कहते हैं कि एक व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। पुमान विरज्जित कौन मनुष्य कौन व्यक्ति छोड़ेगा बिना पशुगनाथ, बिना पशुगनाथ एक ही व्यक्ति नहीं सुन सकता है जो पशुओं की हत्यारा है कसाई है। और पशु का दो अर्थ है, पशु माने जनरल पशु बकरा मछली गाय भैंसा जो काट कर खाते हैं वो पशु है, और एक पशु का अर्थ है आत्मा जीवात्मा जो अपना आत्महत्या कर सकते हैं, जो सुसाइड कर सकते हैं, विष खाकर जो मर सकते हैं, जो अपनी रक्षा करना नहीं जानते उनको आत्मघाती हत्यारा कहते हैं या उसको कसाई कहते हैं। तो जो आत्महत्यारा है, जो अपनी सुरक्षा करना नहीं जानता, किंकर्तव विमूढ़ की अवस्था में स्वयं विष खा लेता है, अपने को मार डालता है, वो तो एकदम थर्ड क्लास डल माइंडेड बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, जो अपनी सुरक्षा करना नहीं चाहता या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेता है कि अपनी हत्या कर सकता है। तो जब उसके पास इतना कम बुद्धि है तो ऐसा डल माइंडेड कृष्ण कथा नहीं सुन सकता, ऐसे लोग कृष्ण कथा नहीं सुन सकते हैं, जो कसाई है वो नहीं सुन सकते हैं, बाकी सभी स्तर के लोगों के लिए कृष्ण कथा है, सभी स्तर के लोगों के लिए। यह महाराज परीक्षित अपने अनुभव की बात इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की बात कई बार सुने हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रारंभ करते हुए ही कहते हैं कि यह कृष्ण कथा किसी भी व्यक्ति को, यह भगवान का नाम संकीर्तन किसी भी व्यक्ति को सुनने लायक है। कैसे श्लोक है? दूसरे अध्याय के प्रारंभ, दूसरे स्कंद के प्रारंभ में है, थोड़ा शुरू में भूल रहे हैं। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम निर्णेतम हरेर नामानुखिरम। एतन निर्विद्यमाना नाम, हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निर्विद्यमाना नाम माने जिसको कुछ नहीं चाहिए, निर्वेद को प्राप्त हो गया, एकदम विरक्त है, या इच्छताम या संसार के हर भोग जिसको चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए विरक्त है और जिसको सब कुछ चाहिए इच्छताम। एतन निर्विद्यमानानम इच्छताम, जो संसार का भोग चाहता है सबके लिए। एतन निर्विद्यमानानम इच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम नृप निर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। जो बिल्कुल निर्वेद को प्राप्त हो गया है, विरक्त है, उसके लिए, जो संसार का हर भोग चाहता है उसके लिए, सबके लिए निर्भय मार्ग, बिना भय के, जहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, सबके लिए अभय पद यही है हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन, उनके कीर्ति का बखान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा इसका अर्थ तीन ढंग से, दो स्तर नहीं तीन स्तर का वर्णन कुछ टीकाकार कहते हैं। एक कहते हैं निर्विद्यमानानम, एक इच्छताम, एक जोगिनाम। मतलब एक परम विरक्त निर्विशेष अद्वैतवादी, जैसे शुरू शुरू में सुखदेव गोस्वामी थे, कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, और एक है इच्छताम भोगी, संसार का भोग, और तीसरा है जोगी, जो अपना संबंध भगवान से जोड़ना चाहता है, भक्त जोगी, जोगी। तो ये तीनों स्तर के लोगों के लिए हरि नाम कीर्तन है, हरि नामानुकीर्तनम। तीनों को अगर निर्भय मार्ग चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का दुख नहीं चाहिए, तो ये हरि नाम संकीर्तन, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना, यह तीनों स्तर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक जगह से प्रभुपाद कहते हैं कि ये तीन तरह के लोग, मतलब विरक्त, भोगी और जोगी, ये तीन प्रकार के लोग का वर्णन करते हैं कि अगर कहीं रास्ते में कोई $100 गिरा है, रुपया गिरा है, तो तीनों तीन तरह से सोचेंगे उसको देखकर, उस नोट को, $100 को देखकर कोई विरक्त सोचेगा, अरे यार इससे क्या मतलब है, पेड़ का पत्ता और डॉलर में कोई अंतर नहीं, तो चला गया, जैसे पेड़ के पत्ते गिरे हैं रास्ते में वैसे नोट गिरा है, उसको कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद कहते हो एक नंबर का मूर्ख है, डल माइंडेड है, उसको कुछ विचार ही नहीं कि वो है क्या, इसका क्या यूज है, सबको छोड़ दिया, चाहे डॉलर हो, चाहे पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, चला गया उसी रास्ते से, ये हमारे काम का चीज नहीं, उस पर असर ही नहीं पड़ा। और दूसरा जब भोगी देखता है इच्छता जिसको संसार चाहिए, वो डॉलर, अरे वाह कमाल हो गया, $100 मिल गया, अब वो योजना बनाता है इसे खरीदूंगा, वो कर दूंगा, ये खाऊंगा, वो पीऊंगा, भोग की प्लानिंग करने लगता है। और यदि उस नोट को कोई जोगी देख ले, भक्त जोगी, तब उस जोग क्या अर्थ है उस पर विचार करेगा, यार किसका नोट यहां गिर गया, जिसका नोट गिरा होगा वो तो दुखी होगा। नोट को उठाता है और उस व्यक्ति का पता लगाता है जिसका है, और खोज करके उसको दे देता है, इसको कहते हैं जोग। नोट को नोट वाला से संपर्क करा देना, ये है जोग। तो ये कहते हैं फर्स्ट क्लास स्तर है, भोगी से उत्कृष्ट स्तर है। उसी प्रकार की संसार में लोग फूले हुए फूल को, गुलाब को देखते हैं तो विरक्तों को कोई मतलब नहीं, वो हरा है, पीला है, लाल है, उसमें सुगंध है, नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं, गया। भोगी देखेगा तो कहे, अरे यार मैं अपने प्रिया के जूड़े में इसको लगाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी मेरी प्रिया श्रृंगार करेगी और इस फूल से तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके मन में भावना है, खुश हो जाएगी, मैं लाल गुलाब ले जाकर दूंगा तो अच्छा। और जब कोई योगी देखता है तो कहते वाह क्या कमाल है, किसने इतना सुंदर पुष्प बनाया, फर्स्ट क्लास, यह सारी सृष्टि भगवान की है, अगर मैं इस फूल को भगवान के चरणों में और उनके मुकुट में लगाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। तो यह सोच करके अगर वो फूल लेता है और भगवान के चरणों में देता है, इसको योग कहते हैं। कोई प्रभुपाद कहते हैं कोई केले को देख कर खाता है, बड़ा टेस्टफुल है यार केला, मजा आ गया, चीटीदार केला, खाकर आनंद की अनुभूति किया, और कोई उसके छिलके को निकाला, कहे हे गोविंद धन्यवाद आपको, थैंक्स स्पेशल, इतना फर्स्ट क्लास पैकिंग हलवा की व्यवस्था की है, इतना बढ़िया हलवा आपने बनाया, तो तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वह समर्पय, ये आपकी वस्तु है, आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इसके बाद प्रसाद रूप में खाता है, यह है भक्ति योग। यह भक्ति योग है भगवान का स्मरण कर लेना हर स्थिति में कि आपने इसको बनाया। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई बाप मार्केट से कोई मिठाई का पॉकेट लावे और अपने बेटे को दे दे, और बेटा तुरंत हाथ में लेकर भागने लगे, जाने लगे, और कदाचित बाप का दे बेटा एक पीस मुझको भी दो, ना ना अब तो हाथ में आते ही मेरा हो गया, तो बाप क्या सोचे कितना नालायक है, मैं लाया मुझको ही नहीं दे रहा, मुझको ही नहीं दे रहा है, और कोई बाप को चाहिए नहीं, केवल उसका टेस्ट लेते थोड़ा मुझे भी दो, लेकिन वो नहीं देना चाहता, और एक लड़का को दिए और तुरंत पॉकेट खोला, पापा एक पीस आप भी ले लो, कितना खुश होगा वो बाप, नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए, नहीं पापा एक ले लो, एक ले लो, अगर ऐसा जिद करने लगे तो उसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं, अगर कोई बाप न मांगे तब भी फर्ज है बेटा को देना, और कदाचित मांग दिए और फिर भी नहीं देता है तो कितना नालायक है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, उनकी इच्छा है कि मुझको दो, बहुत फैक्ट्री में बनने वाले चीज को नहीं कहते हैं, जो नेचुरल चीज है, पत्रम पुष्पम फलम तो चार चीज मांगे तो तीन पेड़ से मांग दिए, वो फैक्ट्री में पेड़ नहीं बनता है, किसी दुकान में नहीं, वो पेड़ नेचुरल बनता है, उसको तोड़कर भले दुकान में रख लेते हैं, पेड़ का तीन चीज पत्ता फूल और फल, और एक जल, जल भी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो भी पृथ्वी में है। भगवान इतना आसान इतना सुंदर चीज मांगे हैं और उसको भी लोग नहीं देना चाहते, उसको भी भोगना चाहते हैं। तो कृष्ण कथा इस प्रकार से, कृष्ण के स्वभाव, कृष्ण के व्यक्तित्व, कृष्ण के जीवों के प्रति सौहार्द की कथा जब हम सुनते हैं तो उसमें रम जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सुनता है, विरक्त व्यक्ति के भी रमाने वाला है, संसारिक व्यक्ति को भी रमाने वाला है, योगी को भी, तीन स्तर के लोगों को रमाने वाला है। यहाँ तो केवल दो स्तर कहा गया, निवृत्त तरसई और भव रोगी, संसार के रोगी। इसको इस तरह से रम जाता है व्यक्ति। तो अभी तो मैं इसके ऊपर की व्याख्या प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ा नहीं, अभी बाकी है। और मुझे कहा गया कि 10 बजे तक कथा कर सकते हैं। तो भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवत गीता या भागवत के कृष्ण विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, प्रभुपाद फीलिंग कर रहे हैं कि रात को लोग बिना कृष्ण कथा सुने नहीं रहते थे। दो चार हमारे उधर उत्तर भारत में 5 दोहा तक रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पहले पढ़ते थे, बचपन में हम लोग देखते थे, 10-20-50 लोग बैठ कर सुनते थे, कुछ लोग पढ़ते थे, या भागवत की, सुखसागर की, या महाभारत की कथा होती थी। लेकिन अब भारत भी पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते हैं कि अमुक व्यक्ति भगवत गीता या भागवत पर बोलेगा तो हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। आज भी प्रभुपाद कहते हैं, अगर यहाँ कोई बैनर पोस्टर लग जाए कि कोई भागवत का वक्ता आ गया, रामायण की कथा कहने जा रहा है, भगवत गीता पर प्रवचन है, तो आज भी हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि भगवत गीता या भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। विरक्त चिवड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, निवृत्त तरसई, जिसको किसी प्रकार की तलाश नहीं है, ऐसे इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चित्त तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से पूर्ण है और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवत गीता के रूप में हो, चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में हो, पूरी तरह नहीं समझ सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इसे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती। कृष्ण कथा अतीव सरल है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर है, वे स्वयं बतलाते हैं, मत्तः परम परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनं, हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य वस्तु नहीं है, सबसे टॉप क्लास के मैं हूं। तो केवल इतना ही जान लेने से कृष्ण परमेश्वर है मुक्त हुआ जा सकता है, किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भगवत गीता सुनना पसंद करते हैं जो भगवत गीता के यथार्थ रूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक अपने को दूषित तरीके से भगवत गीता का प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं को सुनते हैं, क्योंकि ये किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवत गीता और भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दिया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान के गुणानुवाद सुना जाए, भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित विज्ञान में सिद्धात्मा न हो, तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उसे भगवान के विषय में सुनने के लिए न कहे, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उद्धरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोद्गीरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सत्पोच्छिष्टम यथापया, इसको उद्धृत करते हैं सनातन गोस्वामी। यह श्लोक है पद्म पुराण का। तो इसमें कहते हैं कि अवैष्णव जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके मुख से कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। कृष्ण कथा को पूतम हरि कथा मृतम, जो परम पावन पवित्र कथा है उसको भी नहीं सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्य, क्यों नहीं सुनना चाहिए? सत्वोच्छिष्टम यथापय, जैसे गाय का दूध खूब पौष्टिक है, बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसको अगर कोई विषैला सांप पी लिया, छू दिया, तो उसके मुख का विष उस दूध के संपर्क में आ जाता है, और इसके बाद अगर कोई पीता है तो मर जाता है, उसमें विष आ जाता है दूध में। उसी प्रकार जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, संसारिक भौतिक है, तरह तरह के वेशभूषा ड्रेस धारण किए हुए हैं, जिनका लक्ष्य भौतिक भोग है, उनके मुख से अगर कृष्ण कथा सुनते हैं तो वही भोग की भावना आती है। आचार्य जी भी तो ऐसा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, उनकी बड़ी कोठी है, बड़ा रुपया पैसा है, उनके अनेक स्त्रियों से संबंध है, फिर भी वक्ता है। ऐसे लोगों की कथा का क्या असर पड़ेगा? वही विष है ना, विष है उसमें। उस कृष्ण कथा से व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। ये तो संसारिक पेशावर लोगों के विषय में प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन तमाशा यह है कि आजकल श्रोताओं का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, प्रभुपाद की कृपा से आप लोग वैसे श्रोताओं में नहीं है, लेकिन जनरल श्रोताओं का स्तर इतना गिरा है कि जो आनंद सिनेमा घर में क्लब में लेना चाहते हैं, वही आनंद कथा में भी लेना चाहते हैं, इतना स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। पर आप एक जोक याद आ गया कि एक भक्त है उधर हस्तिनापुर की तरफ, मेरठ की तरफ, वो सुनाता है कि एक व्यक्ति तांगा वाला, एका गाड़ी चलाने वाला, एक घोड़ा खरीद लिया। तांगा में घोड़ा की जरूरत था और गलती से उसको बारात वाला घोड़ा मिल गया, बर दुल्हा ढोने वाला घोड़ा। वो जाना नहीं, उसको खरीद लिया और तांगा में उसको चलाने लगा। तो घोड़ा तो बहुत तगड़ा देखने में था, लेकिन वो कुछ दूर चलकर रुक जाता था, कुछ दूर जाने के बाद खड़ा हो जाता। तो कहा, अरे इसमें क्या दिक्कत है, रुकता क्यों है? तो रुकता क्यों है, तो बाद में पता चला कि ये तो बारात में डिस्को देखकर चलने वाला घोड़ा है। अब कुछ दूर जाने के बाद खड़ा होना है, फिर डिस्को देख लेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो उसका आदत है डिस्को नाच देखने वाला। तो अब सोचा कि पैसा फंस गया यार, अब इसको कैसे करें। तो अब ये तो रुक जाता है, तो कुछ उस पर चढ़े हुए लोग थे तांगा पर, आगे बढ़कर वो जो रुकता था ते उससे उतर करके थोड़ा सा खड़ा होकर आगे नाचता थोड़ा नाचता था, इसके बाद फिर चलता, फिर चलता। तो कुछ जो रुकता तो उसको मारने पीटने से वो नहीं चल सकता था, उसके सामने कुछ नाचना पड़ता था। तो तब थोड़ा थोड़ा नाच नाच कर उसको चलाता था ऐसे। तो ठीक यही हालत वक्ताओं का हो गया है, कुछ मजबूरी में। श्रोता ऐसे हैं बारात वाले श्रोता कि वो डिस्को देखना पसंद करते हैं, तो वक्ता को भी मंच पर थोड़ा नाचना पड़ता है। या उनको हारमोनियम साज बाज, वैष्णव वक्ताओं की दुर्दशा हो गई, क्योंकि श्रोताओं का स्टैंडर्ड डिस्को वाला है। अब वो सुनेंगे नहीं, कुछ मनोरंजन चाहिए। लगातार सिद्धांत की कथा कह दो तो बोर होने लगेंगे। जो जानना बहुत जरूरी है, जैसे सनातन शिक्षा की चर्चा चल रही है बोरीवली में, कुछ भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी एकदम ऊपर से जा रहा है। तो आप नीचे से ऊपर आइए ना, नीचे अपना स्तर बनाया है तो ऊपर कैसे आएंगे? ऊपर से जा रही है तो उसका टिकट लीजिए, आप भी विमान से आइए। तो आप नीचे रहेंगे तो विमान का आनंद कैसे मिलेगा? उसका टिकट, वो क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया मने ना करा आलस, जहां ऐसे लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत की कथा सुनने में आलस मत कीजिए, अरे तो मैथ है बड़ा कड़ा है, तो मैथ कहकर छोड़ देने से IIT कंप्लीट थोड़े होगा। इंजीनियर बनने के लिए तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर सिद्धांत की कथा सुनने में आलस नहीं करना चाहिए, या सिद्धांत बोलकर आलस, अरे सिद्धांत है यार ये तो बोर हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो मजा नहीं आ रहा है तो आपको स्टेज से सिनेमा की गाना सुनाया जाए मजा आने के लिए? लोग विचित्र दशा में है। फिर एक जोक की बात याद आ गई। अब देखिए एक गांव में महाराज श्री सुनाते हैं कि एक गांव में दो सहेली थी, एक मलाह की बेटी थी और एक माली की, माली फूल वाला, फूल माला वाला, और एक मछली मारने वाला। गांव की दोनों साथ में सहेली थी, दोनों सयानी हुई, विवाह हो गया अलग अलग गाँव में। तो एक दिन की घटना है, और एक मलाह की बेटी मछली टोकरी में ले जाकर कहीं बेच कर लौट रही थी किसी शहर से, और अंधेरा हो गया, ज्यादा देर हो गया, तो जिस रास्ते से लौट रही थी उसी रास्ते में उसकी सहेली का ससुराल था, उसका गांव था। तो सोची कि चलो आज सखी के पास रुक जाती हूँ, तो पूछ कर चली गई। और वो तो बड़ा खुश हुई, कई वर्षों के बाद भेंट हुआ है, तो बड़ा सेवा की, खिलाई पिलाई। लेकिन इस मालिन की बेटी को नींद ही नहीं आ रहा है, अब बातचीत में भी ज्यादा देर हो गया फिर नींद नहीं आ रहा है। तो अब सोया जाए तो कहीं क्या कहूँ, सखी तुम्हारे घर में इतना दुर्गंध आ रहा है, कहीं केवड़ा, कहीं गुलाब, कहीं फूल रखा हुआ, इतना गंध आ रहा है फूलों का कि हम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, नींद ही नहीं आ रहा है। तो मालिन की बेटी कहती है अच्छा गंध है ना, फूलों का गंध है। अरे पता नहीं मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए, सोना तो जरूरी है। तो कही कि वो मछली का टोकरी सिरहाना रखती हूँ, उत्तम नींद आएगा, क्योंकि मछली के गंध में रही है तो उसको फूल का गंध ही अच्छा नहीं लगता, उसको फूल का गंध बर्दाश्त ही नहीं। जब मछली की टोकरी जब सिर के सामने रखी और कुछ करवाइन गंध आने लगा तब नींद आया। यह दशा है लोगों का, इतना स्टैंडर्ड गिरा हुआ है कि कृष्ण, विशुद्ध कृष्ण कथा अमृत सुनना नहीं चाहते हैं, अमृत नहीं पीना चाहते हैं। वो तो शराब पीने वाले को अमृत क्या चाहिए, संसार के दूषित चीज क्या हुआ। आब माने जल, पानी को जब खूब सड़ा दिया जाता है तब शराब हो जाता है। तो उसको पीना जो चाहता है उसको अमृत में टेस्ट नहीं मिलेगा, ये बिगड़ा हुआ हमारा स्तर है, इसलिए कृष्ण कथा नहीं सुन पाते हैं। तो सिद्धांत बलिया मने ना कर आलस, महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बोलकर, सिद्धांत जानकर आलस मत कीजिए। जहां ऐसे लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस, जिस सिद्धांत को सुनने से ही पक्का मन कृष्ण में लगेगा। ऐसे तो माला उठा लिए कब रख देंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे कि प्रभु कृष्ण मोरे प्रभु त्राता, जब ज्ञान होगा कि कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पालन करता हैं, वो हमारे सुहृद हैं, यह ज्ञान धान की कथा सुनने से पता चलेगी। जब पता चलेगा कि वही सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन, संबंध तत्व की व्याख्या कल हो रही थी, वही अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन अपना जब विकास करते हैं तो दूसरा स्वरूप बलराम, और बलराम से कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, वो सब चतुर्विहु उत्पन्न होते हैं, और उन चतुर्विहु से फिर जगत की सृष्टि होती है। तो भगवान का स्वरूप कभी प्राभव कभी वैभव के रूप में विकसित होता है, एक ही स्वरूप एक साथ जब अनेक रूप में प्रकट होते हैं, उनके रूप में, उनके आकृति में, उनके ड्रेस में, जब कोई कमी नहीं होता तो उसको प्राभव कहते हैं। प्राभव और वैभव समझाने में कल इतना दिक्कत में महसूस कर रहा था कि लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, इतना साफ साफ बतलाया कि जैसे महाराज के समय स्वयं श्री कृष्ण अनेक रूपों में हो गए, कोई ड्रेस में अंतर नहीं, कोई वेश में अंतर नहीं, कोई आकृति में अंतर नहीं, कोई रंग में अंतर नहीं, इसको प्राभव कहते हैं। महिषी विवाह के समय 16108 रानियों के साथ एक साथ एक जैसा रूप धारण की, इसको प्राभव कहते हैं। प्रतिदिन द्वारिका में प्रवेश करते ही सभी रानियों के महल में जिस रूप में प्रवेश करते हैं उसको प्राभव कहते हैं। आज जो वही भगवान स्वयं अपने दूसरे रूप में, आकृति इनका सांवला है, जब गोरे रूप में आते हैं, रंग बदल जाता है, उसको वैभव कहते हैं, वह है श्री बलराम। और वही भगवान जब आकृति वेशभूषा द्विभुज से चतुर्भुज हो जाते हैं, ब्रजेन नंदन का प्रभाव है, और जब वसुदेव नंदन होते हैं तब ये वैभव है, कभी चतुर्भुज कभी द्विभुज, रथ संचालन करते हैं द्विभुज, एक हाथ से रथ के रस्सी पकड़े हैं, एक हाथ में लगाम, अब तब तक अर्जुन को समझाने के लिए दो भुजा और बनाकर समझाने भी लगते हैं, चतुर्भुज भी हो जाते हैं महाभारत में। तो ये है वैभव, कभी चार भुजाएं धारण करते हैं, कभी सहस्र बाहु हो जाते हैं, कभी विराट रूप धारण करते हैं, कभी नारायण रूप में। तो ये भगवान का ही रूप है, कभी धोती कुर्ता में, कभी पैंट शर्ट में, क्या अंतर नहीं है, लेकिन उनका वैभव विकास है। तो प्रभाव वैभव लोगों के ऊपर से निकल रहा था। अरे भाई, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है, सुनिए भगवान माने क्या है। संसार माने तो समझ ही रहे हैं, लेकिन भगवान का अर्थ क्या है ये समझिए। भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के शक्ति सामर्थ का वर्णन, यह सुनिए। जलते हुए आग को पी जाते हैं, ये है भगवान की क्षमता। दहकते हुए सर्प के फन पर नृत्य करते हैं, यह है भगवान की क्षमता। विशाल पर्वत को कनिष्ठ उंगली पर धारण कर सकते हैं, आखिर भगवान माने समझना चाहिए ना। या मंदराचल जिनके पीठ पर चलता है, रगड़ होता है समुद्र मंथन में और सुख पूर्वक नींद लग जाता है, उसको भगवान कहते हैं। अगर कोई भगवान बनना चाहते हैं तो उसके पीठ पर पत्थर रगड़िए और सो जाए, तब मानिए भगवान है। तो आखिर अंतर समझना चाहिए ना, भगवान का क्या अर्थ है। तो इस तरह से जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो कृष्ण में दृढ़ता से मन लगता है। ये तो हुआ उनके रूप ऐश्वर्य का वर्णन, फिर उसी तरह उनके सौहार्द का वर्णन। कितना सौहार्द करते हैं अपने भक्तों के साथ, और उनके साथ क्या क्या सौहार्द किए, यह कथा सुनना जरूरी है ना। तब कहते हैं भक्त वत्सल भगवान वाह। अर्जुन आनंद से सोते हैं, भगवान बेचैन। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए कि कल निश्चित पांडवों को मारूंगा, पांचों को, अपने गुरु महाराज परशुराम के दिए हुए बाण से कल पांचों को मारूंगा। दुर्योधन उकसा दिया और ये प्रतिज्ञा कर लिए। अर्जुन जाकर सो गए। रात को शिविर में भगवान कहते हैं तुमको नींद आ रही है, सुना है भीष्म की प्रतिज्ञा। अरे तो क्या करूं रात भर, कल जो होगा देखा जाएगा। कहते नहीं, कल नहीं देखना है, आज ही देखना है। तो आज क्या करूं? कहते हैं आज ये करना है कि जाओ दुर्योधन के शिविर में। भीष्म पितामह ने एक नियम बनाया था कि सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ होगी, सूर्यास्त होते ही सारा भेदभाव खत्म, कोई दुश्मन नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी से मिल सकता है, किसी के शिविर में जा सकता है, रात के समय कोई युद्ध का काम नहीं। भीष्म पितामह ने नियम बनाया। बाद में भीष्म पितामह गिर गए तो नियम टूट गया, दोनों ग्रुप तोड़ दिया। आगे कौरवों ने तोड़ा, तो न द्रोणाचार्य पालन किए न कर्ण पालन किया, तो वो टूट गया। लेकिन 11 दिन तक ये नियम चलता रहा, भीष्म पितामह जब तक थे, जब तक युद्ध में उपस्थित थे, सेनापति थे। तो कहे कि जाओ दुर्योधन के पास और मैं जो कहता हूं करो। तो अर्जुन गए, तो जाकर दुर्योधन से अर्जुन कहते हैं कि भैया, अर्जुन को देखकर दुर्योधन कहा, अरे अर्जुन कैसी आगमन हुआ। कहा भैया, मैं पितामह की प्रतिज्ञा से बड़ा चिंतित हूं, कल तो हम पांचों को मार डालेंगे। तो मेरे मन में एक बात आया कि आप जो हस्तिनाप का राज मुकुट है जिसको आप पहने हैं, हम लोग उसी के लिए मर रहे, तरसते रह गए, लेकिन कल जीवन समाप्त हो जाएगा, तो आप अपना राज मुकुट, अपना ड्रेस हमको दीजिए और हम पांचों भाई महाराज युधिष्ठिर पहनेंगे, हम भी पहनकर थोड़ा अपने शिविर में घूम लेंगे, सौ उतार लेंगे। ये है भगवान का ट्रीट, समझा। तो दुर्योधन कहा हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ ले जाओ। तो वास्तव में कोई बात नहीं, दे दिया और उसको लेकर आए। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर के पास नहीं जाना है, पहनो, तुम ही पहन लो, पहनो। ड्रेसिंग किए, भगवान पहना दिए और कहे जाओ भीष्म के पास। और अर्जुन ही बड़ी कलाकार थे, बात भी सुंदर बजाते थे, गाना भी बहुत सुंदर गाते थे, बोली भी किस्म किस्म के बोलते थे। तो कहे कि पहन कर जाओ और भीष्म को प्रणाम करो और दुर्योधन की भाषा में बात करना, भीष्म को ना पता चले कि अर्जुन है। मुकुट उकुट पहन कर सब जाओगे तो थोड़े पहचानेंगे, सभी राजकुमार हैं एक जैसा। तो गए अर्जुन और प्रणाम किए भीष्म पितामह। तो कहे हाँ दुर्योधन, तो पितामह एक विशेष काम से आया हूं। क्या? मैं ये सोचता हूँ कि आप हम कौरवों के लिए और पांडवों के लिए समान रूप में, पितामह दोनों के लिए हैं, और जब आपको अपने गुरु परशुराम के बाणों से ही पांडवों का वध करना है तो अब क्यों कलंक लेना चाहते हैं? वो बाण तो मैं भी प्रयोग करूंगा तो मर जाएंगे ना, तो आप क्यों अपने हाथ से अपने बच्चों को मारेंगे? वो बाण ही मुझको दे दीजिए और मैं अपने हाथ से मारूं, प्रतिद्वंदी तो मैं हूं। तो भीष्म पितामह कहते वाह दुर्योधन, कमाल की बात सोचा। वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूँ कि क्या तुम्हारे बहकावे में आकर प्रतिज्ञा कर लिया, कैसे मैं युधिष्ठिर को मारूंगा, कैसे भीमसेन को मारूंगा, कैसे अर्जुन को मारूंगा, जिनको मैं अपने गोद में खिलाया, स्नेह दिया, उनको अपने हाथों से वध करूंगा। दुर्योधन मेरे भीतर की अंत वेदना है कि मैं सारे दुनिया को मार सकता हूँ लेकिन 105 को नहीं। मेरे मन में स्नेह है, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा बात किया, लो ये पांचों परशुराम जी का बाण था। परशुराम जी जब अम्बा के विवाह के समय युद्ध हुआ और भीष्म के युद्ध शैली से प्रसन्न हो गए तब पांच बाण दिए कि विषम परिस्थिति में जब तुम्हारा बल काम न करे कभी तो इस बाणों का प्रयोग कर लेना, ये अजय बाण है। तो बाण दिए कार के रूप में और भीष्म गलती से प्रतिज्ञा कर लिए कि इसी बाण का प्रयोग करूंगा। यहाँ अर्जुन उस बाण को ले लिए अपने हाथ में और लेकर जब गए तो भगवान कहते तो मेरे हाथ में कर्म करने का अधिकार सबको है, फल तो मेरे हाथ में रहना चाहिए। ले लिया, कहे लौटा दो उसका ड्रेस, लौटा दिए। तो फिर दुर्योधन पहना, उसका रोज का नियम था कि प्रणाम करके भीष्म पितामह को सोता था, तो फिर अपना ड्रेस पहना प्रणाम करने गया। तो भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो कहे क्या हो गया है दुर्योधन, आज ज्यादा उतावले में हो, फिर दोबारा क्यों आ गया? नहीं पितामह, मैं तो अभी आ रहा हूं। कहीं अभी आ रहे हो, कुछ देर पहले कौन आया था? अरे वो तो अर्जुन मेरा ड्रेस पहना था। क्या हुआ पितामह? अरे मूर्ख, मैं बार बार कहता हूं कि जिस पक्ष में केशव है विजय उधर है। तुमको समझ में, जानते हो हुआ क्या है? बहुत भारी हत्या हो गई। क्या हो गया? वो पांचों बाण ले गया। सारी कथा सुनाती है। अब कैसे मरेंगे? इसको कहते हैं सौहार्द, इसको कहते हैं भगवान का सौहार्द। और तीन बार प्रतिज्ञा किए अर्जुन को मारने का, एक है और दूसरा बार फिर प्रतिज्ञा कर लिए इसी तरह दुर्योधन के बहकावे में आकर। कल निश्चित रूप से अर्जुन को मारूंगा। तो भगवान द्रौपदी के पास गए रात में, कहे जाओ भीष्म पितामह के पास चलो, उनको प्रणाम करो घूंघट में, ऐसे नहीं पता न चले कि द्रौपदी है, और पीछे से दासी बनकर चलने में द्रौपदी अपना जाने लगी और दूसरे लोग न जाने इसके लिए जो चप्पल पहनकर जा रही थी भगवान उसका चप्पल निकलवा लिए और स्वयं दासी बनकर पीछे से जा रहे थे। और जब गई प्रणाम की तो वो पूछे कौन, तो द्रौपदी अपना परिचय न देकर दुर्योधन के पत्नी के रूप में प्रस्तुत हुई। तो कहे कि अच्छा सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिए। तो घूंघट हटाई और कहे पितामह कैसे, कल तो आज कल वध करेंगे हमारे पति। द्रौपदी तो कहे कि अच्छा समझ गया, वो दासी कौन है, दासी का भी घूंघट हटाओ, क्या ड्रामा करते हो, सारा संसार आपके मुट्ठी में है और इस तरह ड्रामा करने की जरूरत है? आप जिसको चाहे उसको दूसरा कोई मार सकता है, आप बचाना चाहे तो कोई मार सकता है क्या, और आप जिसको मारना चाहे उसको भीष्म बचा सकता है? नहीं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ऐसा नहीं हो सकता केशव। तो ये तमाशा। और तीसरा बार कह दिए कि दो में एक होगा, नहीं हथियार उठाने वाले कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा और नहीं तो मेरे हाथ से अर्जुन मारा जाएगा। अगर ऐसा दो में एक नहीं कर पाया तो संतनु पुत्र नहीं कहूंगा, असल बाप का बेटा नहीं। तो भगवान देख लिए कि अर्जुन के सामने जब भीष्म की युद्ध होने लगी, भयंकर बाणों का सामना हुआ, अर्जुन बाण काट रहे थे लेकिन इतना पसीना से लथपथ हो गए। और भगवान का केवल सामने ही आंख नहीं, पीछे भी आंख है, यही तो उनके इंद्रों की विशेषता है। अंगान जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, केवल आंख से ही नहीं देखेंगे, इधर से भी देख सकते हैं। तो देख लिए कि अर्जुन थक गया और पसीना पोंछना चाहता है, तो भीष्म पितामह के तीव्र गति से चलते हुए बाण को भगवान एकदम सह नहीं पाए, खींच कर मारे रथ पर और घोड़े घुटने टेक लिए। तो उनका बाण जिसमें पसीना पोंछे उस समय बाण तो ऊपर से निकल गया, लेकिन भीष्म को क्रोध कृष्ण पर आ गया कि देखो किस तरह बचा रहा है। तो फिर बाण मार रहे हैं और अर्जुन एकदम थक गए, एकदम थक गए, अब बाण उनका काम नहीं कर रहा है। तो भगवान खड़ा होकर भीष्म के बाणों को अपने कवच पर रोकने लगे और भीष्म पितामह इतना क्रोध में थे कि कृष्ण के कवच को तोड़ दिए। वो अपने स्तुति में कह रहे हैं कि मुझे अक्ताई ने सारथी को आपको भी बाणों से मारा और विध कर दिया, कवच टूट गया, कृष्ण के छाती से खून निकलने लगा और भीष्म मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। भगवान सोचे अब क्या करें इसको, अब एक तो धर्म की मर्यादा को तोड़ दिए, कवच तोड़ दिए। तब भीष्म पितामह की तीव्र गति से चलाते हुए बाण और इधर कृष्ण की देख लिए कि अर्जुन बच नहीं सकता, तो कहे कि छोड़ो अपनी प्रतिज्ञा, चूल्हा भाण में जाए कूद पड़े रथ से और कूद करके कहे नहीं मानेगा बूढ़ा, रथ का चक्का उठा लिया। तो भीष्म पितामह बाण रख दिए, कहे बस विजय मेरी है, मुझे अर्जुन को नहीं मारना है, मुझे आपको हराना है, हरा दिया। आइए आइए द्वारिकानाथ, बस आपका स्वागत है। और उधर ज्यों ही भगवान कूदे, अर्जुन कूद कर कमर पकड़ लिए, नहीं नहीं आप हथियार मत उठाइए, अर्जुन को घसीटते हुए भगवान भीष्म की ओर आ रहे हैं। यह है भक्त वत्सलता, दोनों तरफ से भक्त वत्सलता है, केवल अर्जुन की तरफ से नहीं भीष्म की तरफ से। अर्जुन को बचाना है यह प्रतिज्ञा, और अर्जुन की रक्षा करना है यह स्नेह, और भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया इसका क्या होगा। अगर इसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो दुनिया के लोग कहेंगे कि भीष्म बड़ा भक्त बनता था, इसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं। तो हमारे भक्त का मान रखना चाहिए, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया कि इनको हथियार उठाना पड़ेगा, तो चलो उठा लेता हूँ। और कहे पितामह आप एक बाप के पुत्र हो, संतनु पुत्र हो, मेरे बाप का तो कोई ठिकाना नहीं, कोई नंद नंदन, कोई वसुदेव नंदन कहता है, मैं थोड़े एक बाप का हूँ कि टेंशन है। आप एक बाप के पुत्र है, आपकी रक्षा होनी चाहिए। ये है भक्त वात्सल्य। तो इसकी कथा सुनना जरूरी है ना, भगवान के भगवत्ता जितना महत्वपूर्ण है उनका भक्तों से सौहार्द भी महत्वपूर्ण है, और उसी प्रकार भगवान के गुण, उनकी लीला, उनकी कथा, इसको सुनने से भाव रोग समाप्त होता है और फिर निवृत्त व्यक्ति का भी मन लगता है इसमें। तो भागवत की रचना करने के बाद शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इसको सुनने मात्र से, इसको केवल अगर व्यक्ति सुने तो कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, केवल सुनने मात्र से प्रेम उत्पन्न होता है। जस्याम वही सूर्य महायाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुरुषम शोक मोह भयापहा। भागवत के सुनने से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है और यह कृष्ण प्रेम उसका असली फल है कृष्ण कथा का। और उसका साइड इफेक्ट क्या है, शोक मोह भयापहा, संसार का दुख समाप्त हो जाता है। जो भूतकालिक स्थिति को सोचकर हम दुखी होते हैं वो शोक है, वर्तमान कालिक जो पोजीशन है वो मोह है, और भविष्य के लिए जो टेंशन है वो भय है। ये भूत भविष्य वर्तमान सारे दुखों को समाप्त कर देता है भागवत। इसका ये असली फल नहीं है, इसका अनुसंगिक फल है, साइड इफेक्ट है। संसार का दुख भी समाप्त होता है और फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जस्याम वही सूर्य महाराणा कृष्णे परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। ये है कृष्ण कथा की विशेषता। निवृत्त तरसै रूप गीय मानत भव सदा क्षत्र मनोभिरामत। तो भव रोग से दुखी लोगों के लिए द बेस्ट औषधि है कृष्ण कथा, और निवृत्त लोगों के लिए रमने लायक विषय है, किसी भी स्तर के व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा है। फिर आगे तो और कहेंगे कि मेरे लिए तो स्पेशली गर्भ में मैं भगवान का दर्शन किया, मेरी रक्षा किए, जिन्होंने अश्वत्थामा के बाण से मुझको बचाया, उस कृष्ण की कथा को मैं केवल टेलर से विश्वास कर लूंगा? नहीं, मुझको पूरा फिल्म देखना है, पूरी कथा सुनना है। जिन्होंने मेरी रक्षा किया, माँ के गर्भ में रक्षा किया, जो हमारे पितामहों को महाभारत समरांगण से बचाया, उस कृष्ण की कथा हम सुनना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि केवल तुम्हारे परिवार से इनका संबंध है इसलिए सुनना चाहते हो मानो सुखदेव? नहीं, जो प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में अंदर बाहर इतो नरसिंह परतो नृसिंह जातो जतो जा ततो नृसिंह, सब जगह जिनकी स्थिति है, उस परम प्रभु की कथा सुनना चाहता हूँ जिनसे सबका संबंध है। केवल मैं अपने विषय में नहीं, जितने लोग हैं उनका सबका संबंध कृष्ण के साथ है, इसलिए मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। कई श्लोकों में कृष्ण कथा के औचित्य को बतला रहे हैं और इतना सुंदर जिज्ञासा किए कि सुखदेव गोस्वामी जो दो श्लोक में कृष्ण कथा खत्म किए उसको 90 अध्याय में फिर कहे, पूरा दशम स्कंद 90 अध्याय में। तो जिज्ञासु की स्तर को देखकर ही वक्ता बोल सकता है। मैं भी इतना देर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग हिल नहीं रहे हैं। अगर इसी में कुछ लोग उठकर जाने लगते तो मैं बंद कर देता। लेकिन कुछ वक्ता होते हैं कि जो माइक पकड़कर बोलना चाहते हैं। इस पर भी एक जोक याद आ गया। एक भक्त एक कथाकार थे, तो वो कथा कहते थे और रामायण की कथा कहते, और कथा कहते समय माइक के सामने आंख बंद करके कथा करते। कथा करते करते बहुत देर हो जाता है, उनको टाइम का कोई वैल्यू नहीं, तो कितने देर तक लोग बैठेंगे? उठ उठ कर सब लोग चले गए, केवल दो व्यक्ति बैठे रहे। जब आंख खोले तो देखे दो लोग बैठे हैं, तो कहते ओ राम कथा जिन सुनत अघाई, रस विशेष तिन जानत नाही। राम कथा को सुनकर जो लोग उब जाए, इसका अर्थ कि उद्देश्य नहीं लिया, ये अभागे हैं, आप ही दो सौभाग्यशाली। लेकिन जिज्ञासा है कि आप क्यों रुके हैं, आपको क्या टेस्ट मिला, आपको क्या मिला? दो ही लोग थे। तो एक व्यक्ति कहा कि स्वामी जी, जो आपके आसन पर बिछाया गया है मेरा साथी है, मेरा गमछा है, आप उठेंगे तब तो मैं उसको लूंगा। दूसरा से पूछे कि आपको क्या मिला, तो कहे कि माइक सिस्टम मेरा है, आप बंद करेंगे तब तो मैं इसको बंद करूंगा। केवल दो ही लोग रुके थे। तो वैसा पक्का तो मैं नहीं हूं, अगर मुझको पता चल जाए कि जा रहे हैं तो बंद कर दूंगा। तो ठीक है, ज्यादा विलंब हो गया। ये है कृष्ण कथा का रस। कृष्ण कथा का रस लेने लगेंगे तो संसारिक रस क्या हो जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुछ जिज्ञासा है? जिज्ञासा पर भी एक बात याद है। एक बार महाराज श्री कथा कर रहे थे किसी गांव में बिहार के, तो कथा हुई, कथा से ज्यादा प्रश्नोत्तर हुआ। कथा 45 मिनट, प्रश्नोत्तर 1 घंटा से ज्यादा। तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ, तो महाराज कहे हाँ आपका क्या जिज्ञासा है? तो वो कहा कि स्वामी जी बंद कब होगा? ये उसकी जिज्ञासा। महाराज का बस बंद हो गया। आप ये बात पहले पूछ देते तो पहले बंद हो जाता। तो अब यही जिज्ञासा बाकी रह गया, बंद कब होगा। चलिए।